Kunjabi Hang Hari. Dayaradha Madhava Kunjabi Hang Hari. Jaya Gopi Janavallabha Grivaradha Hari. Gopi Janavallabha Grivaradha Hari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tera Vanacham Harin Yamuna Tera Vanacham Harin Jaya Radha Madhava Kunjabi Hang Harin Jaya Radha Madhava Kunjabi Hang Harin Jaya Radha Madhava Kunjabi Hang Harin Jaya Gopi Janavallabha Grivaradha Hari Jaya Gopi Janavallabha Grivaradha Hari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tera Vanacham Hari Yamuna Tera Vanacham Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hang Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hang Hari Jaya Gopi Janavallabha Grivaradha Hari Jaya Gopi Janavallabha Grivaradha Hari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Janjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tera Vanacham Hari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hong Hari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hong Hari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Kunja Bihade Radha Kunja Bihade Radhe. Jaya Radha Raspi Hadi Radha Raspi Hadi Radhe. Jaya Radha Giri Dadi Radha Giri Dadi Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jaya Radha Radhanatha Radha Radhanatha Radhe. Jaya Radha Vinod Bihadi Radha Vinod Bihadi Radhe. Jaya Radha Shyam Sundara Radha Shyam Sundara Radhe. Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe. Jaya Radha Vrindavana Chandra Radha Vrindavana Chandra Radhe. Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Vrugucaya Sota Sato Sishamachila A.C. Bhakti Viranta Samishila Prabhupada Ki. Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Vrugucaya Sota Sato Sishamachila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Shila Prabhupada Ki. Anantukudi Vaishnavarinda Ki. Jaya Shirup Sishanatan Bhattaraganachi Jeevagopala Vatadasaraganachari Goswami Prabhu Ki. Prem Seko, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda, Sri Adaita Gadadhar, Shiva Jari Gaura Bhakti Varinda Ki, Sri Radha Krishna Go Gopa Gopika Bina Acham Kundradha Kundigiri Govadana Ki, Vrindavan Dham Ki, Mathura Dham Ki, Maipanavib Dham Ki, Jaganapuri Dham Ki, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki, Ganga Yamuna Devi Ki, Harinam Sankirtan Yagya Ki, Sri Sri Gonitai ki, Sri Sri Krishna Varam ki, Sri Sri Radha Shama Sundar ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Samaveta Bhakta Vrinda ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shigra and Chiguranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayamudirayet nashtrapaye shabadeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki ete cham sakalapumsam krishnastu bhagavan sayam indriyarvyakulam lokam ridyante yuge yuge Nama Sanketanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranama Dukkha Samanastam Namami Harim Param. Ajam Srimad Bhagavatam Atvaskand Panchvadhyay Shlok Sankhya Santis Satais Satais. Vipaschitam pranam anodiyatmanam Atendriyabhasam anidramavranam Jayata pau yatra nagridrama paksau. Tamaksaram kantri yugam prajamahe. Vipaschitam pranamano diyatmanam. Atendriya basam anidramma vranam. Chayata pau yatra nagridra paksau. Tam aksaram kam triyugam brajamahe. Vipaschitam pranam anodiyatmanam. Atendriya basam anidramma vranam. Chayata pau yatra nagridra paksau. Tam aksaram kam triyugam brajamahe. Vipaschitam pranam anodiyatmanam. Atendriya basam manidram avranam. Tayatta pato yakrirat paksau. Tamaksaram kam priyugam brajamahe. Vipaschitam pranam anodiyatmanam. Atendriya bhasam manidram avranam. Chayata pau yatra nagridra paksau. Tamaksaram kam triyugam brajamahe. Vipaschitam sarva gyako प्राण किस तरह प्राण कार्यशील है, मना किस तरह मन कार्यशील है, धिया किस तरह बुद्धि कार्यशील है, आत्मानं सारे जीवों का अर्थ इंद्रिया विषय इंद्रिया इंद्रिया अभासं ज्ञान अनिद्रम सदैव जागृत तथा अज्ञान से मुक्त अवरणम सुख तथा दुख से प्रभावित होने वाले भौतिक शरीर के बिना चाय अतापाओ अज्ञान से दुखी समस्त लोकों के आश्रय यत्रा यहां ना नहीं गृध्रपक्षाओ किसी भी जीव का पक्षपात तम उनको अक्षरम अच्युत खम आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त त्रियुगम तीन युगों सत्य त्रेत तथा द्वापर में चार ऐश्वर्या समेत प्रकट होकर ब्रजमा है मैं शरण ग्रहण करता हूं। अनुवाद और तत्पर्य शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानता रहता है कि किस प्रकार प्राण मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक है और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका शरीर भौतिक नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फालों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकवादी विद्या के अज्ञान से मुक्त है। अतएव मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो सनातन सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और जो तीनों युगों सत्य त्रेत तथा द्वापर में अपने सार ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। तत्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जन्माद्य यस्य यतो अन्वयत इतरस्तस्तत्तेज्ञ अभिज्ञा। श्री भगवान समस्त उद्भावों के उद्गम है और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतएव श्री भगवान को यहाँ पर विपश्चितम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाले। श्री भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, मता स्मृति ज्ञानम अपहनम चा, श्री भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करता है और उनमें विस्मृति उत्पन्न करता है। प्राणियों की संख्या करोड़ों करोड़ में है और श्री भगवान उनको निर्देश देता है, अतएव उन्हें सोने के लिए समय ही नहीं रहता है और वे हमारे कार्यकलापों से कभी भी अनजान नहीं रहते, अनजान नहीं रहते। श्री भगवान हर एक घटना के साक्षी है, हम प्रतिक्षण जो भी कर रहा है उसे वे देखते रहते हैं। श्री भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते, हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फलस्वरूप निर्मित होता है, कर्म ना दैव नेत्रे न। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें अविद्या नहीं रहती, वे सोते नहीं, अभी तो सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। श्री भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सतयुग त्रेता तथा द्वापर युगों में नाना रूपों में प्रकट हुए थे, किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषित नहीं किया। कृष्णावनम तिसा कृष्णम संग पंगस्त पार्षदम, श्री भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे श्री कृष्ण होते हैं किंतु वे भक्त भी बनते, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवतम संस्तुति करती है, यज्ञाय संकित पर्याय जानते ही सुमेध सहा, श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग श्री कृष्ण की भांति संभालनाय है, अभी तो सुनहरा त्रिषा कृष्णम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके साथ नित्यानंद अद्वैत गदाधर तथा शिव जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इन श्री भगवान की पूजा करते हैं। इस अवतार में श्री भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतः वे त्रियुग कहलाते हैं। ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति सापदन्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललित श्री विशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च प्रीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो इस भौतिक जगत में दो प्रकार के इस मनुष्य शरीर में दो प्रकार के लोग रहता है, सुर एवं असुर। जो भगवान को मानता है सुर लोग देवता लोग है या मनुष्य शरीर में भी रहते हुए भी, जैसे बुसुर गान ये ब्राह्मण का जो ये कहलाता है बुसुर गान, भू मंडल के सुर गान जो है ये ब्राह्मण है जो भगवान को मानता है। असुर लोग जो भगवान को नहीं मानता है नास्तिक है। और तो स्वर्ग लोग में और ब्राह्मण लोग में ज्यादा से ज्यादा वहां पर के लोग जो भगवान को मानता है, इस भूमंडल में दोना है सुर लोग और असुर लोग है। और इसके बाद नीचे के जो लोग जो होता है इसमें ज्यादा तो असुर लोग है। तो यह है कि इसमें इस भौतिक जगह में रहते हुए इसके बीच में उनके बीच में बहुत बार लड़ाई होता है, विशेष करके क्योंकि ये असुर लोग तो इंद्रिय तृप्ति की ओर प्रयास कर रहा है। और जब ये इसमें कुछ वादा आ जाता है और अगर ये भी देखता है कि भक्त लोग जो भगवान को मानते हैं उनके पास ज्यादा है, तो ईर्ष्या के कारण से उनको तकलीफ देता है। इसलिए यहाँ पर जिसमें भी उल्लेख किया है कि तो युद्ध हो रहा है उनके बीच में, जैसे 5000 वर्ष से पहले कौरव और पांडव के बीच में तो कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हो गया था। तो कृष्णा क्योंकि भक्त उनके आश्रय में है, जैसे इसमें भी उल्लेख किया है ब्रजामा है, ब्रज भगवान के आश्रय में जाता है। और कृष्ण भी कहते भगवद गीता में सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आशु चः। सर्वधर्म ये भौतिक धर्म जो होता है ये छोड़ दो, माम एकम शरणम ब्रज, यहाँ पर भी शब्द आया है ब्रज, मेरे पास आओ। तो ये वास्तव में ये वास्तविक धर्म है, कृष्णा की सेवा करना ये वास्तविक धर्म है, पर धर्म है नित्य धर्म वास्तव धर्म। तो कृष्णा भक्त के परम पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। और जैसे भगवद गीता में चौथा अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताता है कि परित्रणाय साधनम विनाशाच दुष्कृतम धर्म समस्तपनाथ या संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आ जाता हूँ। परित्रणाय साधन या साधु लोग की रक्षा करने के लिए, विनाशाच दुष्कृतम जो असुर लोग जो है दुष्कृत दो जो इस दो प्रकार के कार्य है तो पुण्य और जो भगवान के प्रति हो और जो शास्त्र के अनुसार हो, और इसके बाद पाप जो शास्त्र के विरोध में है इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो ये असुर लोग इसमें लीन है, इंद्रिय तृप्ति के में लीन है। और ये भक्त लोग को कष्ट देता है, उनको मार डालने के प्रयास भी कर रहा है, इसलिए भगवान की रक्षा करता है। और उनको मार डालता है ये असुर लोग, विनाशा चवीन उनके विनाश कर रहा है। और साथ ही साथ तो धर्म स्थापन आता या धर्म स्थापित कर रहा है वास्तविक धर्म कि क्या करना है। जैसे कृष्ण कहता है यो जो धर्म जो होता है कि जी जैसे वान आश्रम भी तो वान आश्रम के अनुसार तो चलना है लेकिन कृष्ण केंद्र में होना चाहिए। अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो वास्तविक धर्म नहीं है, इसलिए छोड़ना है और कृष्ण के अनुसार सब कुछ करना है जिससे कृष्ण संतुष्ट हो जाता है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम अनुकूलन अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुशील कृष्ण के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, ये भक्ति है। अनुकूल्यस्य कल्पा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो अनुकूल है तो ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है इसका त्याग करना चाहिए। रक्ष ईश्वर से विश्वास हो गोपृत्वे वर्णम तथा, विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे रक्षा जरूर करेंगे। गोपृत्व वर्णम तथा, गोपृत्व मतलब यह है कि हमारे परम पोषण जो जिससे माता पिताजी करता है वास्तव में भगवान की कृपा से होता है, तो भगवान के भरोसे में चलता है। आत्म निक्षेप कर्पण्या, तो शरणगत होकर हमको आगे जाना है, तन मन वच कृष्ण की सेवा में लगाना है और भी नम्र भाव में रहना है। दायनत्व होना चाहिए और ये भी पक्का होना चाहिए। जब भजन करता है वास्तव में तब जब आध्यात्मिक वस्तु पर पहुंचता है तब तो ये दायनत्व तो पक्का हो जाता है। तो ये शरणागति के जो छह लक्षण है, सद्विगम सद्विदम शरणागति। तो सबसे जैसे भक्त के अलग अलग गुण है, इसमें भी उल्लेख किया है शास्त्र में 25 गुण है। यह है कि विनम्र है, दयालु है, दूसरे की सहायता कर रहा है, मन और इंद्रिया वश में रखता है, मितभोग तोर से खाता है सिर्फ जो जरूरत है जिससे तबीयत ठीक रहता है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो गुण है कृष्णाय के शरणम, कृष्ण के शरण में आया है तो कृष्ण के अनुसार सब कुछ कर रहा है, कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहा है, कृष्ण के गुणगान करता है, शरीर भी सेवा में लगाता है कृष्ण के, तगु जी की सेवा कर रहा है, मंदिर के मजन कर रहा है, भोग बनाता है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा है, ये शरणागति है। तो यह कि सदा के शरीर में हम प्रयास कर रहे हैं सब कुछ भगवान का अर्पण करना है, लेकिन वास्तव में पूर्ण शरणागति संभव है जब आध्यात्मिक वस्तु पर है, तब पक्व दायनत्व प्रकट हो जाता है, दृढ़ विश्वास होगा और पूर्ण शरणागति संभव है, लेकिन कम से कम प्रयास करना है। और तो तब तो आगे जा सकता है। और तो अनन्य चिंतन तमाम ये जनपाय पार्षद तेषम नित्य वियोक्ता नाम योग क्षमाम वहाम यहाम, जो निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहा है तो भगवान उनका उनकी रक्षा करता है। और जो भी कुछ चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से तो मिल पाता है। तो जैसे हम सुखपूर्वक तो रहना है, मतलब रहने की जगह भी होना चाहिए, खाना तो मिलना चाहिए रोज रोज प्रसाद, तो ये भगवान की कृपा से होता है। लेकिन इसके बाद भी आध्यात्मिक दृष्टि में भी हमको कुछ चाहिए कि मतलब यह है कि कैसे आगे जा सकता है, तो ज्ञान दिव्य ज्ञान भी मिलना है, कैसे भजन करेंगे ये भी इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए तो भगवान भी तो सबके दिल में है और मार्गदर्शन देने के लिए तो तैयार है, प्रयास कर रहा है, किंतु जब सदक तो आगे नहीं है तो जो भगवान कहना चाहता है दिल में नहीं समझ सकता है पूर्ण रूप से। इसलिए कृष्ण की कृपा श्री मूर्ति श्री गुरु प्रकट हो जाता है और उनकी कृपा से हम समझ सकता है कि हमको कैसे भजन करना है, कैसे आगे जा सकता है, और अगर कुछ समस्या है तो समस्या का हाल गुरु की कृपा से तो निकल सकता है। और तो लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमेशा हमारी देखभाल करता है, खुद करता है और भक्त के रूप में, और भक्त के माध्यम से या गुरु के माध्यम से सहायता देता है, जिससे हम आगे जा सकता है, जिससे हम सुखपूर्वक रह सकता है। तो यसुर लोग तो कष्ट में थे, इसलिए तो ये देवता लोग तो हर गए, तो जब युद्ध होता है, और तो ब्रह्म जी के पास पहुंच गया, जो सर्वोत्तम इस भौतिक जगत के 14 भुवन है, 14 जो मंडल है, जैसे भूमंडल है, इसके ऊपर तो भुवन लोक है, स्वर्ग लोक है, तप लोक है, महालोक है, और सर्वोत्तम जगह ये सत्य लोक है, ब्रह्म लोक, जहां पर ब्रह्म जी विराजमान है, और वहां पर सिर्फ भक्त लोग रहते हैं, जो भगवान की आराधना कर रहा है, यो जो आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक जो अभ्यास में लीन है, योगी जन वहां पर रहता है, जो विद्वान जो होता है, और उनके वहां पर सूक्ष्म शरीर है, भौतिक शरीर लेकिन सूक्ष्म है, और भगवान के चिंतन में और सेवा में लीन है, तो वहां पर असुर लोग तो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जो नीचे के लोग है, जैसे इंद्र के लोग, वहां पर तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये जब कोई जो असुर जो होता है, जब ये वैदिक अध्ययन के माध्यम से भी तो शक्तिशाली हो जाता है, जैसे रावणा, हिरण्यकशिपु, ये वेद शास्त्र भी एक प्रकार से मानते थे, लेकिन उनके जो वास्तव में वेद शास्त्र का अध्ययन क्या, इसका फल क्या होना चाहिए और किस लिए कर रहा है, ये उनको उनको नहीं मालूम है, ये सिर्फ सोचता है कि वेद शास्त्र अध्ययन करते हुए तो सुखपूर्वक इस भौतिक जग में रह सकता है और इंद्र तृप्ति में लीन हो जाता है, वो सोचता है कि सब कुछ हमारे लिए होने चाहिए, अहम ममेति, मैं और हमारा इस भाव में है, और दूसरे की अपमान भी कर रहा है, विशेष करके भक्त लोग को, लेकिन भक्त तो विनम्र भाव में रहता है और दूसरे के हित में सोचता है। तो बहुत कष्ट मिलने के बाद देवता लोग ब्रह्म जी के पास पहुंच गया, हम कष्ट में आए थे, असुर लोग हमको बहुत कष्ट देता है, तो ब्रह्म जी, उनको भी मालूम है ये ब्रह्म जी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी कभी कभी असुर लोग बहुत शक्तिशाली है कि ब्रह्म जी भी कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति तो पहुंच गए थे सब। तो ब्रह्म जी भी कहते हैं ठीक है, अब ये की उपाय है, भगवान के पास जाना है, भगवान की कृपा से तो समस्या का हल निकल सकता है। और तो इसके बाद वहां पर इस भौतिक जगह में स्थित क्षीर सागर में वहां पर हमको जाना है, वहां पर विराजमान है विष्णु भगवान, क्षीर रक्षा विष्णु वास्तव में, और इस भौतिक जगत के अंतर्गत, लेकिन इस भौतिक जगत से परे है, तो वहां पर जाके तो उनके सामने, तो वहां पर मतलब क्षीर सागर वहां पर पहुंच के तो स्तुति स्ताव स्तुति अर्पण करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे भगवान से, तो उनके गुणगान करते हुए सबसे पहले प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करेंगे थोड़ा सा हमारा सहायता देने के लिए, और जरूर हमें सहायता दे देंगे भगवान। तो ऐसे किया है, तो अभी इस श्लोकों में भगवान का गुणगान कर रहा है ब्रह्मा जी। तो सबसे पहले यहां पर कहता है कि विपश्चितम सर्वज्ञ, उनको सब कुछ मालूम है भगवान को, त्री जिससे इसमें त्रियुग तो इसमें उल्लेख किया है. त्रियुग मतलब सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अवतरित होता है भगवान के अलग अलग अवतार. और कलयुग में इसे त्रियुग के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि कलयुग में ये गुप्त रूप में आ जाता है. और वास्तव में कि कलयुग के शुरुआत में और अंत में संध्या के समय है. जैसे सुबह के समय और शाम के समय और दोपहर के समय भी संध्या है, तीन संध्या. लेकिन विशेष करके सुबह सूर्योदय के समय तो रात्रि नहीं है और दिन भी नहीं है, ये संध्या कहलाता है. संध्या समय संध्या वंदन करता है तो अंधेरा नहीं है, पूर्ण मतलब ये सूर्य देव का दर्शन नहीं मिल सकता है संध्या के समय. और ये सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय संध्या है. तो दिन नहीं और रात भी नहीं है. वैसे ही चार युग है लेकिन हर युग के अंत और तो जैसे त्रेत युग के अंत के समय और ये कलयुग के शुरुआत के समय ये संध्या कहलाता है. संध्या त्रेत युग नहीं है और कलयुग भी नहीं है, परिवर्तन होता है इसलिए संध्या कहलाता है. क्योंकि एक दिन जैसे एक दिन रात और इसके बाद तुरंत तो रात रात्रि और दिन नहीं हो जाता है, समय लगता है थोड़ा बहुत. जैसे रात के समय अगर चंद्रमा नहीं है अमावस्या के समय तो कुछ नहीं देख सकता है, धीरे धीरे अंधकार. और सुबह भी धीरे धीरे कुछ देख सकता है, इसके बाद तो सूर्योदय के बाद सब कुछ देख सकता है. वैसे ही तो जैसे द्वापर युग इसके बाद कलयुग आ जाता है. लेकिन वास्तव में ज्यादा समय सतयुग इसके बाद द्वापर युग इसके बाद त्रेता युग इसके बाद कलयुग. लेकिन हमारे इस बार तो बदल गया, पहले त्रेता युग आ गया इसके बाद द्वापर युग आ गया है. तो द्वापर युग के अंत के समय तो तुरंत जो लक्षण जो होता है युग के और तो तुरंत में प्रकट हो जाता है. जिससे अल्प आयु कलयुग में 100 वर्ष तक रह सकता है, कभी कभी 100-150 साल तक रह सकता है लेकिन इससे ज्यादा ना आए. सिर्फ कोई योगी है हिमालया, क्योंकि ये योगाभ्यास के माध्यम से 200-300-400 साल 500 साल तक रह सकता है. जैसे एक बार प्रभुपाद वहां पर जब कुंभ मेला के लिए गए तो उसी समय तो स्नान करके सुबह तो कोई योगी लोग आए थे तो प्रभुपाद भक्तों लोग को बताते थे ये 500-600 साल के योगी है. तो लेकिन तो सरण जीव के लिए संभव नहीं है. हम प्रयास कर रहे 100 साल तक रहना है लेकिन भी मुश्किल है. और लेकिन दूसरे युग में 1000 वर्ष तक रह सकता है. तो धीरे धीरे तो मतलब बदल जाता है तो आयु जो होता है. पहले 1000 द्वापर युग तक रह सकते थे, इसके बाद 900, 800, 700, अभी तो 100 तक तो पहुंच सकता है, इससे ज्यादा ना आए. और काली युग के अंत तो जो आयु जो होता है 20 साल तक है, 20 साल तक है बस. जब 16-17 साल के है तो सोचते हम वृद्धावस्था में पहुंच गया है. आजकल में भी अनुभव करता है तो 50 साल के है तो हम भी महसूस कर रहे अभी तो वृद्धावस्था में है, पहुंच गया है. तो यह है. तो संध्या के समय जब आ जाता है ये श्री चैतन्य महाप्रभु तो लगभग अभी पूरे याद ना है 12 साल या 16 साल की संध्या है, 16,000 साल. तो संध्या के समय आया और काल के अवतार कलयुग के अंत के समय आएगा तो संध्या के समय. इसलिए भगवान का नाम त्रियुग बीच में ना आता है कलयुग में, क्योंकि स्थिति तो ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक होना चाहिए तब आ जाता है भगवान. जैसे दिल में कैसे प्रकट हो जाता है भगवान, दिल में है लेकिन नचदित है क्योंकि शुद्ध भावनाएं है, भावना ठीक नहीं है, कलुषित है, इसलिए प्रकट होता नहीं है. दिल में, भावना में, वह समय दिल में है लेकिन क्योंकि शुद्ध भावना है इसलिए उनको नहीं देख सकता है। लेकिन जब शुद्ध भाव है भजन करते करते, विशेष करके महामंत्र उच्चारण करते करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब शुद्ध नाम का उच्चारण करता है तब कृष्ण प्रकट हो जाता है। और क्या हो रहा है वहां पर, लड़ाई नहीं करना चाहिए, जो भी हो बैठिए बैठिए बैठिए, जो भी है ना तो सहनशील होना चाहिए, जो भी हो रहा है सहन करना चाहिए। तुझे को तंग नहीं देना है, और अगर कोई भी करता है तो सहन करना चाहिए, ठीक है। मजाक भी नहीं करना चाहिए ज्यादा समय, मतलब जब पाठ होता है, जब ठाकुर जी की सेवा होता है, गंभीर रूप में रहना है भजन करने के लिए। तो यह है कि भगवान तो परम दयालु है, और जैसे यहाँ पर उल्लेख किया है त्रियुग, तो युग के अंतर्गत आ जाता है, बहुत सारे भगवान के अवतार है एक युग में, सिर्फ एक नहीं है, अनेक अनेक अवतार आ जाता है हर युग में। और लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हम कलयुग में है, और इसमें कलयुग में ज्यादा तो आगे जाने के लिए गुण नहीं है, जिसे लंबे आयु नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोग ये तम और रजगुण के अंतर्गत स्थित है, तो इसलिए भजन करना मुश्किल है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आयुत की कृपा से जब मनुष्य देहदारी जीव मनुष्य शरीर में जब भजन करते, विशेष करके महामंत्र के, तो सत्गुण में पहुंच सकता है, और इसके बाद भजन करते करते आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकते बहुत जल्दी महाप्रभु की कृपा से और गुरु की कृपा से, जो भगवान के प्रतिनिधि है। तो इसलिए इसमें भी उल्लेख किया है, तो महाप्रभु के बारे में, कृष्णावनम तिशा कृष्णम संग पंगस्त पदम यज्ञ संकित पया जयंती ही सुमेद सहा, ये दो भाग में विभाजित किया है प्रभुपाद ने ये श्लोक। लेकिन तो ये 11वें स्कंद के श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें उल्लेख किया है कि कलयुग के अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जो ये कृष्णा ही है, लेकिन श्रीमती राधारानी के भाव और द्युति लेकर आया है। तो भगवान के नाम से ये श्री कृष्णा, श्री कृष्ण चैतन्य, तो युग धर्म स्थापित किया है, युग धर्म स्थापित किया है ये महामंत्र के जप या कीर्तन करना। इसके बाद कैसे जप करना है और भजन करना है, किस भाव से, ये भी दिया गया है, ब्रज भाव में रहना है तो तब आगे जा सकता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, इसलिए ब्रज भाव देने के लिए आया है वास्तव में। और जब उनके शरण में आ जाता है कोई और भजन कर रहा है तो जल्दी आगे जा सकता है। तो नम महावदन्यया सबसे दयालु अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और जो वास्तव में स्वयं भगवान है, जैसे कृष्ण स्वयं भगवान है, एते चमसा कलपुम सम कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, मूल रूप है, आदि पुरुष है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु आदि पुरुष मूल रूप है, क्योंकि ये श्री कृष्ण और राधारान के अभिन्न स्वरूप है। और सबसे दयालु है, वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी दयालु है, क्योंकि राधा रानी का भाव है, जो कृष्ण के परम प्रिय, उनके सर्वोत्तम भाव प्रेम है राधा रानी के, और कृष्ण विषय विग्रह है, प्राणनाथ है, ये हमारे अरध्य देव है, विषय विग्रह, श्रीमती राधा रानी के पास प्रेम है, आश्रय विग्रह है, तो आश्रय विग्रह श्रीमती राजानी की कृपा से हम प्रेम मिल सकता है। और गुरु जी वास्तव में राजानी के प्रतिनिधि है, कृष्ण के और राजानी के प्रतिनिधि है। राजानी की कृपा से हम कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो इसलिए तो हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय तो गुरु के आश्रय में तो पहले जाना है, उनके आदेश अनुसार सदन भजन करना है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहना है, तब श्रीमती राजानी के पास पहुंच सकता है और गोपियों के पास पहुंच सकता है, तब राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है, कृष्ण संतुष्ट हो जाता है। तो ये चनावतार है, लेकिन इसमें भी तो त्रियुग का दूसरा आती है, त्रियुग, युग मतलब दो, जैसे राधा कृष्ण युगल युगल स्वरूप है, जैसे महामंत्र युगल मंत्र है, युगल मंत्र है हरे कृष्णा, ये कौन है, राधा कृष्णा है। तृतीय युग मतलब तीन बार दो, ये क्या है, इसमें उल्लेख किया है प्रभुपद भी, ये ऐश्वर्य भगवान की ऐश्वर्य है, कितना है, सारा ऐश्वर्य पूर्ण छह है, तीन बार दो ये छह हो गया। तो इसमें इंगित किया है कि भगवान के उनके अद्भुत जो ऐश्वर्य है जो इसमें संख्य दिया गया है, वास्तव में जो भगवान के गुण है असंख्य है, लेकिन जैसे शास्त्र में उल्लेख किया है 64, तो भगवान के गुण है और विशेष करके चार गुण जो सिर्फ कृष्ण के पास है, भगवान स्वयं भगवान से कृष्ण वेणु मधुरिया लीला मधुरिया रूप मधुरिया और प्रेम मधुरिया सिर्फ कृष्ण के पास है। लेकिन इसके अलावा ये है कि जो सार ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, ये जो उनके यश जो है, उनके रूप के जो सुंदर रूप जो होता है ये, और इसके बाद ज्ञान पूर्ण ज्ञान है और शक्तिशाली है, और इसके बाद यह है कि विरक्त भी है, जैसे कृष्णा तो रस नृत्य कर रहा है असंख्य गोपियों के साथ है, और ऐसे कर मतलब यह है कि इस भौतिक जगह में तो ज्यादा से ज्यादा तो पुरुष तो बिना स्त्री नहीं रह सकता है, ब्रह्मचारी जो होता है तो कम है, दुर्लभ है, या सन्यासी जो सिर्फ भजन कर सकता है। लेकिन प्रॉपर भी कहते थे मैन इज अ वुमन एंड वुमन इज अ मैन, तो पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए। और इसके बाद तो ये स्त्री संग छोड़ना तो कठिन है, अगर शरीर से ना है और मन से भी, और लेकिन तो एक दिन तो छोड़ना चाहिए। तो जैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तो वानप्रस्थ आश्रम, वहां पर भी स्त्री के साथ मतलब स्त्रियों के साथ भी जा सकते हैं, और लेकिन कोई गोपनीय मतलब मतलब घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए, उसी समय सेवा भाव में रहना है, कृष्ण केंद्र में होना चाहिए। और लेकिन अन्यथा तो जब कोई जब स्त्री पुरुष के साथ है तो इससे प्रभावित हो जाता है स्वास्थ्य के अनुसार भी। लेकिन कृष्णा तो विरक्त है हमेशा, आत्मराम है, अब तक काम है, जो असंख्य गोपियों के साथ थे, नृत्य कर रहा है, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, ये भगवान है, उनके बारे आ गया, अद्भुत है, तो कृष्ण अद्भुत है, उनके लीला अद्भुत है। तो यह है कि बहुत लंबा 12 श्लोक है, इसमें बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन अभी देख रहा हूं तो 9 बज गया, इसलिए यहां पर समाप्त करना चाहिए, क्योंकि आगे भी जाना है तो अलग अलग कार्य है। तो लेकिन यह है कि महाप्रभु के बारे में बताया गया है इसमें श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वास्तव में उनकी कृपा के बिना आगे जाना तो अत्यंत कठिन है, और इसलिए विशेष करके महामात्र का छत्र से उच्चारण करना है प्रेम से दिल से, और लेकिन जो नियम जो होता है पालन करना चाहिए, जैसे चार नियम और विधिवत पूर्वक रहना है, जिसे दूसरे के साथ अच्छे तरह से नहीं रहना है, लड़ाई नहीं करना है, ऐसा करते हुए भजन करना है, अच्छे तरह से प्रजापति नहीं बोलना है, दूसरे की आलोचना ना करना, सिर्फ भगवान के गुणगान करना चाहिए, दूसरे के गुणगान करना चाहिए, सेवा भाव में रहना चाहिए, दूसरे की सेवा करना चाहिए, विनम्र भाव में रहना है, यह है। तो अच्छा तरह से जाप करना, भगवत श्रवण ज्यादा से ज्यादा करना है, ठाकुर जी की सेवा भी करना है, ऐसे करते हुए हम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवताम की, श्रील प्रभुपाद की।